शतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि न जुआमि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं चिते आज हमादेर ब्रजमंडल परिक्रमा उपलक्षे मथुरा परिक्रमा आरंभ हो गई है। आज परिक्रमा के समय भूतेश्वर महादेव जी का दर्शन हुआ, उसके बाद में पोतरा कुंड, कृष्ण का आविर्भाव स्थान, आदि केशव का मंदिर और उधर से वो माया का कौन माया महाविद्या का दर्शन करते हुए विश्राम घाट होकर के गोकर्णेश्वर और वहां से होते होते विश्राम घाट तक परिक्रमा हुई। शास्त्रे एरकम उल्लेख देखा जाए कि प्राचीन काल थीके ब्रजमंडले परिक्रमा हो, समस्त संप्रदाय लोग ब्रजमंडले परिक्रमा करें, विशेष करे बल्लभ संप्रदाय के लोग भी पैदल 40 दिन की परिक्रमा करते हैं, तरफ परिक्रमा करें। किंतु हमारे गौड़ीय वैष्णवेते जे रकम है होते भावपूर्ण भावे थे आ कृष्ण जतो माधुर्यमयी लीला कीर्तन श्रवण स्मरण वंदन अर्चन आत्मनिवेदन इत्यादि, विशेष कर तीन टी श्रवण कीर्तन स्मरण जे रकम हो हमारे विधि पद्धति आसे अन्य कोनो संप्रदाय के नहीं से, विशेष करे कोनो समय नारदेर इच्छा होई छिलो जे कृष्णे सबसे के प्रिय के एटी दर्शन करवार जन्य द्वारका नित्तनी जान आशे खाने लीला होई छिलो नौ वृंदावन लीला होलो आशेषे कृष्ण प्रसन्न है नारद ऋषि के वर दिले दूठी बरते चाहले एक जे कृष्ण ऐसा मधुर लीला जरा राधा कुंडे ते होई छिलो भांगीर बने ते होई छिलो साकेते ते होई छिलो जावटे ते होई छिलो कोकिल बने ते होई छिलो ऐसा लीला श्रवण करवें साधु रसिक तत्त्वज्ञ वैष्णव निकट ताहादेर जेन ए लीलाते प्रवेश है। आर द्वितीय बार जे स्थाने ते अपनार ऐसा मधुर लीला होई छे সেই স্থানে যদি কেউ যায় শ্রদ্ধাপূর্বক দণ্ডক প্রণতি করে তাহলে তাহাদের মধ্যে এই ভাব এসে আসুক, আর এই ভাব মধুর ভাব তারা প্রাপ্ত হোক। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই স্থানে যান, সেখানকার লীলা মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, সকলেই শ্রবণ করেন, তাতে ভক্তি যত রকমের অঙ্গ আছে সমস্ত অঙ্গের পালন করা হয়ে যায়। এরকম বিধির ব্যবস্থা অন্য সম্প্রদায়কে নাই। বল্লভাচার্যের সম্প্রদায় যা হয় পরিক্রমা, তাতে এই মধুর লীলা তাহারা জানে না শুনায় না, তাদের এই লীলাতে প্রবেশ নাই বাৎসল দরসে। আর যেখানে বাৎসল দরসের ভাব সেইখানে ওখানে যায় আর ওর কার কার লীলা কথা বলে কি অভিনয় করে। আর আমরা সব স্থানে গেলেও রাধাকুণ্ড সর্বোত্তম স্থান, তাছাড়া নন্দগ্রামের আমার গীত যেখানে হয়েছিল কদম্ব কেয়ারি উদ্ধব কেয়ারি টের কদম্ব কোকিল বন যাবর যাওয়াতে তে তারা কি করতে যাবে, ওরা জানে না এই মহত্ব, এই জন্য যায় না। আর আমরা সেই স্থানে বিশেষ রূপে যাই, আর সেখানকার নিগূঢ় লীলা যারা আমাদের গোস্বামীরা বর্ণন করেছেন আমরা সকলকে শুনাই, আর সকলকেই এই মধুর রসেতে প্রবেশ করবার জন্য চেষ্টা করি, প্রেরণা প্রদান করি। তা আজকে ওই উপলক্ষে আমরা বৃন্দাবন মথুরাতে জন্মস্থানে গিয়েছিলাম, সেখানকার কথা বর্ণন হয়েছে, কে বলেছিল? তোমার জিভ চুলকাচ্ছে, he has some issue in his tongue to speak something.
Tata guru ki
jai, tat kuch bolo ta janmasthane krishna radir bhav hoychilo jan gokule mathura vrindavan mat gokule hoychilo ar er moddhe ki rahasya ityadi ei shabdi bolo. But before who will speak what I told you?
আজকে পান্ডাবীদের নিয়ে চলে চিত্রমাই বলছে, পান্ডাবীদের কবে নিবেন চিত্রমা জিজ্ঞেস করছেন, পান্ডাবের বিভাগ বিদায় করতে
হতো
ওখানে মিটিং করবে
since ancient times that Vrajmandal Parikrama has been done by all Sampradayas, especially the Vallabhacharya Sampradaya. But our Gaudiya Vaishnavas, full of emotion and taste for this Matriya Lila, perform all the different things of bhakti when we go to various places, especially three important ones.
সময় মিলে তো আজ
So Gurudev was saying, sometime there was one lila with Narad Muni, and it was his desire to go to Dwarka for darshan. This lila is called Nanga Vrindavan Lila. And Krishna gave Narad Muni two boons. So the first one is that he would go to all these various places where all these lilas took place, like Pandirvan.
You are understanding what he is telling you?
Yes, understand.
Okay?
Yeah, okay.
Pandirvan, Radhakund, and all these various places. And from sadhus, he would hear these pastimes and answer them. So the next boon that Narad Muni got was that in all these pastime places, when anyone would go to these pastime places, they would also receive these various emotions and absorb themselves in this Madhurya life. If they do Dandavat with Shraddha at these places, then they can become absorbed in all these Madhurya life. Gurudev continued saying, when the Vallabhais perform parikrama, they aren't able to enter into all these Madhurya lilas. And instead, they discuss the Vatsalya lilas of Krishna. But for the Gaudiya Vaishnavas, Radhakund, Kadam Kyari, Kokilvan, all these various places where Krishna's Madhur lilas took place, the Gaudiya Vaishnavas go to these pastime places and they discuss Anjavak. And they discuss these various Madhura lilas. And also all the villagers are Goswamis of Vrindavan. The Vaishnavas, Gaudi Vaishnavas go there and discuss these also. So in that way, gradually they enter and absorb themselves in these Madhurya lilas.
I told so much already.
Sutra, Gurudev. In Sutra he told. Sutra. Achyuta Sutra.
Achyut Prabhu has told almost everything, but we have missed on two points. One is that those who will go to these Krishna's pastime places and bow down with Shraddha, even though they do not have opportunity to hear there, but if they have strong faith, then yes, Krishna's pastimes took place here, and please, I also go down that these pastimes should be inspired in my heart, then he will also attain Prajapati. And also, Srila Gurudev was stressing that other sampradayas have also been doing parikrama from ancient times. Even Vallabhaja Sampradaya, they do parikrama for 40 days and they walk on feet. They don't do it by buses. But what do they speak there? Maximum they would speak about Krishna's Vatsalya Leela, parental good pastimes. But they do not know anything about Javat, about Sanket, about Radhakund, what Leelas and Surya Kund, where Krishna's Madhyan Leela pastimes being played.
Especially Javat.
They have no information about Javat. They think that Radharani's place is Raval and Barsana. For Javat, they have no faith. But our Gaudiya Vaishnavas, they go to each and every place of Brajalila in Brajamandal and they speak on different subject matters from Vatsalya to Sakya, from Sakya to Madhurya, and they discuss it there with the authenticated Dham Mahatma. And this gives us a very fair opportunity to receive the glimpse of Krishna's pastimes which were there 5,000 years ago. Thank you.
Any other sampradaya? They have nothing to bother about gopis. Only Mother Yashoda. nothing, no sakhas also even.
But our sampradaya especially always they discuss about gopi prem, especially in Nandgaon, Kadambakyan. Har ye separation mood, jal prajal divyonmad, everything in Nandgaon. They don't know all subjects because they have not taken the shelter of Chaitanya Mahaprabhu. That is why they are. They don't read and know the subject of Ujjwal Nilmani. Never. So how they can eat? So our sampradaya. And as in our sampradaya, as in our sampradaya also, Pujyapad Madhava Maharaj and others are doing parikrama. But what subject we deal? Oh, they don't touch this subject. They only speak about Aishwarya Leela of Krishna. That's all. So you are lucky, very, very lucky. In parikrama, our whole lens of bhakti will come automatic. Today we went to generally Krishna's Abhirbhava place and he is speaking from that side. তুমি বলো
Bola Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Nesarabhata, Vrishnupad, Vajmani Pilla, Vrishnu Vrishnupad, Arto, Darpata, Sri Krishna, Madhusakti, Sri Guru, Siddhanti Goswami Maharaj, Pujarana, Dhamalini, Anantabani, Sastram, Dhanavar, Pranamada, तत्पश्चात परिशिक्षा गुरुदेव परिप्राजिक आचार्य जगदम्बि स्वामी श्री वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुचरण सरज में शरदा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में मेरा यथाजोग्य प्रणाम। श्रील महाराज जी मुझे आदेश दिए हैं कृष्ण का, कृष्णा मथुरा में जन्म हुए उसी विषय पर कुछ प्रकाश डालने के लिए। कृष्ण गीता में बोलते हैं, अजो विषाण अभयात्मा भूतानाभि ईश्वर विषाण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्माय। कृष्ण कहते मैं अजो हूँ, मेरा जन्म नहीं है, लेकिन अजो होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ अपना योग माया को आश्रय करते हुए। इसलिए मेरा जो जन्म कर्म क्षमतीप, इसलिए मेरा जन्म कर्म, साधारण लोग बोलते हैं हम भी जैसे जन्म लिया, भगवान तो वैसे जन्म लिया है, और हमारे जन्म में भगवान का जन्म में क्या फर्क है। कृष्ण कहते नहीं, जन्म कर्म क्षमतीप एवं यह वेदितत्वतः त्यक्त्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेव स्वर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म कर्म जो तीव्र है उसको जो तत्वतः जान ले, फिर उसको शरीर छोड़ने का बाद फिर किसी जगह तुम्हें कोई दो बार जन्म ही नहीं लेता है। इसलिए श्रील कवि कर्णपुर भगवान जन्म लेने का बहुत सारे कारण बताते हैं, और वे बताते हैं भगवान कृष्ण क्यों जन्म लिया। अनुग्रह आया भक्ता नाम करो क्रिया, भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए भगवान ने जन्म लिया और तरह तरह का लीला किए हैं। और दूसरा कारण उन्होंने बताए कि आत्मा राम अपि बनाकर श्री जो सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म ध्यान में लीन थे, लेकिन कृष्ण का एक सुंदर स्वरूप जो बड़ा पीड़ा नटवर बभु को करनयो करनि कारम विद्धत बास कनक कपिश्वर परिजयंती चमाला रंधनान बेन रधर सुधया पुरयन कोप वृंदय वृंदारण्यम सबद रमणम प्राविशस्तद इतगित। केवल एक श्लोक भी झंकार से अगर भगवान जन्म नहीं लेते, अगर इतने सुंदर लीला नहीं करते, इतने सुंदर स्वरूप नहीं रहता, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे संपूर्ण ब्रह्म ध्यान में इसलिए आत्मा राम अपि कणाकर सी कहते भगवान इसलिए लीला किया जो आत्मा राम जो योगी लोग है उनको भी उनको सुंदर लीला उनका सुंदर स्वरूप उनको भी आकर्षण करता है। इसलिए कुर्बन अहित की भक्ति इतम भूत गुना है। भगवान का ऐसे दिव्य लीला है जो आत्मा राम को भी आकर्षण करता है, इसलिए भगवान के लीला किया। और जो स्वरूप सिद्धि को बाद में जिनको वस्तु सिद्धि प्राप्त करना है, इसलिए वे कैसे जो हमारे आने कैसे प्रकट वृंदावन में उनको जन्म देते हैं और कैसे कृष्ण भक्तों का संग मिलता है, फिर उसको बाद में कैसे वस्तु सिद्धि होता है। इसलिए बहुत कारण से भगवान इसी जगत में जन्म ले करके जीवों को वर में कृपा करते हैं। इसलिए मथुरापुरी कहते मथुरापुरी दिव्य धाम है जिसको रूप गोस्वामी ने कहा वैकुंठ जनित परामरपुरी। कहते वैकुंठ से भी पर कहती है मथुरा है। कहते क्यों? कहते वैकुंठ में भगवान का थोड़ी जन्म लिया प्रभु, उनको कोई पिता भी नहीं, कोई माता भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान पिता माता नहीं, उनको तो पिता है नहीं, लेकिन भगवान मथुरा नहीं कहते उनसे भी ये मथुरापुरी श्रेष्ठ है जो अजय होते हुए भी भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं। इसलिए रात्रि एक निवास है ना हरि भक्ति प्रजायते। एक रात अगर कोई मथुरा में निवास करे उसको भगवत भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए आप लोग सब जानते हैं कैसे कृष्णा मथुरा में कैसे देवकी वसुदेव के गर्भ में भगवान कैसे आए। इसलिए उनको पूर्व जन्म की कुछ कथा सुनाए कहते ये कृष्णी और सुतवा थे और ये इन लोगों ने बड़े कठोर साधन भजन की आसारे भोग सुख परित्याग करके भगवान की विष्णु की आराधना की। भगवान जब संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो? कहते प्रभु आप जैसे मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसे कोई दूसरे तो होते ही नहीं, ठीक है मैं ही पुत्र रूप में आ जाऊंगा। इसलिए भगवान उनको पुत्र वात्सल रस देने के लिए भगवान पुत्र रूप में आए। कहते उधर कहते इधर द्रोण और धरा कहते इन लोगों ने ब्रह्मा को आराधना की है। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले तुमको क्या चाहिए? बोले भगवान का चरण में हमारा वात्सल्य प्रेम हो। तो यहाँ पर विवेचना देते हैं कि एक व्यक्ति भगवान को उपासना किए और एक व्यक्ति ब्रह्मा जी को उपासना किए, लेकिन फल किसको ज्यादा मिला? और इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने मांगा आप जैसे पुत्र, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ये मांगा आपका चरण में वात्सल्य प्रेम हो, भक्ति हो। इसलिए भरण दिखाते हैं कहते भगवत आराधना का द्वारा जीव को जो वस्तु प्राप्त होता है, अगर कोई भक्त की आराधना करे तो उससे श्रेष्ठ वस्तु मिलता है। और उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ये मांगा आप जैसे पुत्र हो। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? कहते नहीं, हमें तो प्रभु के चरण में वात्सल्य प्रेम चाहिए। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है कृष्ण नहीं, हमारा लक्ष्य प्रेम है। क्योंकि प्रेम का गुण है सांद्रनादा विशेष आत्मा श्री कृष्णा दर्शन चसा। इसलिए प्रेम का लक्षण है जो एकदम प्रेम भक्ति को गाढ़ता पूर्वक जो प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम और श्री कृष्ण दर्शन चसा वो भगवान को बड़ा भगवान को आकर्षण करता है। इसलिए भगवान देवकी बस अभी प्रश्न होता है ब्रह्मा की आराधना से और विष्णु की आराधना से ही भगवान जन्म हुए। कहते नहीं, एक बात नहीं, कहते ये देवकी वसुदेव ये नित्य पिता माता और यशोदा नंद बाबा ये नित्य ही पिता माता है। वो बात से आस्वादन किए, लेकिन तत्वतः देवी वसुदेव और नंद यशोदा तत्वतः हुए नित्य परिकरे। नहीं तो ब्रह्मा जी, तब विश्वनाथ ठाकुर ने कहा कि तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिया ये द्रोण धरा को, आशीर्वाद दिया तो कृष्णा उनको पुत्र रूप में आए। यदि ये कैसे है, ये कैसे संभव है, जिसे ब्रह्मा ने गोवंश हरण करने पर जिस ब्रह्मा ने भगवान बड़ी स्तुति की, स्तुति करते करते ब्रज में कोई कुंभ लता कोई पशुपति होने के लिए उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन बाद में देखा मेरा इतने सौभाग्य नहीं ब्रज का कोई दुर्बलता व पशुपति हो सके। तब उन्होंने क्या प्रार्थना किया, तब दुई भाग्यम विह जन्म किं कटव्या जत गोकुल अपि कथमान्ति रजोभिषेकम्। उन्होंने यही प्रार्थना किया, ब्रज का बाहर जहाँ पर छोटे जाति के लोग रहते हैं वहां पर पत्थर जन्म की उन्होंने प्रार्थना की और उनका अगर चरण धूल मिले तो जीवन सार्थक। कहते ब्रह्मा जी से व्यक्ति उन्होंने प्रार्थना किया ब्रज के बाहर छोटे जातियों का चरण धूल। जब उन्हें ये प्रार्थना किया ब्रज में कोई जन्म नहीं ले सके तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से फिर कृष्ण के ये हमारे जसोदा और नंद को वो कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं, ये कैसे संभव है, ये असंभव है, हाँ ये असंभव है। इसलिए भगवान मथुरापुरी में हम लोगों को पता है कैसे दत्ते को द्वारा पीड़ित होने पर विष्णु देवी ब्रह्मा शंकर जी को लेकर के कैसे खीर समुद्र को पास में जाते हैं और उनको कैसे स्तुति करते हैं भगवान को, और भगवान ने बोले हमने सब कुछ जान लिया है, इसलिए सब आदेश दिया तुम लोग जदुवंश में और गोकुल में वहां पर जन्म ले लो। अभी देवती वसुदेव को कंस ने कारागार में बंद कर दिया और उन्होंने एक एक करके उनके छह संतानों को उन्होंने मारा है। कहते जो छह संतान इसमें सिखा दिया, अगर कोई भगवान को हृदय में प्रकट करना चाहते हैं हमारा अंदर में जो छह ऋतु है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, पहले इसको समाप्त कर उसको बाद में सप्तम कर्म शुद्ध सत्व रूप में श्री बलदेव प्रभु गुरु रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाए भगवान आने का, क्योंकि बलदेव प्रभु ये संधिन शक्ति की मूल अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव प्रभु, इसलिए वो आकर के भगवान आने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए। फिर जाकर के भगवान कृष्ण देवी गर्भ में भगवान कृष्ण आते हैं, कृष्ण आने पर सारे देवता लोग आकर के कैसे भगवान को स्तुति करते हैं, कहते सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वं शरणं ममास्तु। देवता लोग भगवान को सत्य बोल करके उनको बारंबार सत्य स्वरूप बोल करके उनको स्तुति करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए हमारे तलवा जाके कहते हैं भागवत का जो प्रथम श्लोक में जो सत्यम परम धीमहि बताए, जो प्रथम श्लोक अभी भागवत का इष्ट देव कौन है, इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक है उसको बोले वस्तु निर्देश है, मतलब श्रीमद् भागवत ग्रंथ का इष्ट कौन है। अभी उसमें केवल विशेषण विशेषण किया गया, कोई विशेष पद का कोई शब्द नहीं, इसलिए वो एक श्लोक के ऊपर में 108 तरह का टीका है, कोई शंकर जी को ऊपर में, कोई दुर्गा जी को ऊपर में, कोई ब्रह्मा जी को ऊपर में, कोई राम में, कोई कृष्ण, तरह तरह रूप में वहां पर व्यवहार किया है। इसलिए भगवान जी भी कहते हैं लेकिन वहां पर जो शब्द है सत्यम परम धीमहि, वह परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, परम सत्य कौन है, इसलिए मानव जो देवता लोग यहाँ पर ब्रह्मा संजय नारद ये सारे देवता लोग आ गए थे भगवान कृष्ण को ही गर्भ स्तुति में
पूरे परम सत्य वही है, इसलिए पुनः पुनः सत्य शब्द को उच्चारण करते हुए सत्य परम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सोरी निहितांत सत्य पुनः पुनः सत्य बोल करके स्थापन करते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो इष्ट है जो वस्तु निर्देश है वो एकमात्र भगवान कृष्ण ही वस्तु निर्देश है। यहाँ पर देवल लोग यहाँ पर स्थापन कर रहे हैं वो चीज को, लेकिन ये रसिक टीकाकार कहते हैं हाँ ये तो बात सही है, लेकिन क्या यही कृष्ण का ही नाम ले रहे और किसका नाम? कहते नहीं, अकेले कृष्ण को तो गौरी वैष्णव उपासना नहीं करते हैं जब तक श्रीमती राधा रानी नहीं हो, इसलिए वहां पर बोले हाँ कहते परम च पराम चि परा, कहते जो पराशक्ति कृष्ण का तो नहीं कहते श्रीमती राधा रानी जिसको बोले देवी कृष्ण मई प्रता राधिका परा देवता। इसलिए जहाँ पर कृष्णा और राधा ये दोनों को ही वहाँ पर स्तुति कर रहे हैं बहुत बहुत बात बताई वहाँ पर, इसलिए देवता लोग यहाँ पर भगवान को पुनः पुनः सत्य स्वरूप रूप में गर्भ स्तुति करते हैं। हे प्रभु जो लोग आपका भक्ति आश्रय भक्ति की सर भक्ति की सहारा लेते हैं वो तो आसानी से ही जैसे कोस पद में जितने पानी हो जैसे आसानी से उसको पार कर लेते हैं उसी तरह जो भक्ति को सहारा लेने वाले वो आसानी से पार हो जाते हैं, लेकिन भक्ति छोड़ करके जो ज्ञान जो तपस्या को आश्रय ग्रहण करते हैं वही कठिन से उनको संसार पार होना बहुत कठिन है उनके लिए, लेकिन भक्ति ग्रहण आश्रय ग्रहण करने पर आसानी से पार हो जाते हैं। उन्होंने तरह तरह से उन्होंने दिव्य स्तुति की और अभी भगवान प्रकट होने वाले, इसलिए भगवान प्रकट होने से पहले उन्होंने कमद्भुत बाल तो अंकुश प्रणाम, प्रकट होने से पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रभु दर्शन देते हैं, दर्शन दे करके तब भगवान कहते हैं उन्होंने सारी बात बताए अभी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा। देवकी वस्त्र ने बोले प्रभु आपको तो हम बालक रूप में पुत्र रूप में प्रार्थना किया था आप इस स्वरूप धारण करके क्यों आए? कहते मैंने पूरा पूर्व जन्म का बात याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ और गोकुल में वहां पर जसोदा को गोद में एक लड़की जन्म हुई है, अभी मैं तो बालक बनते ही मुझे ले करके गोकुल में छोड़ देना और वहां से बालिका को ले आना। तो उन्होंने ऐसे बोल करके अंतर ध्यान हो गए। इतने में देवकी उसको गर्भवती हूँ हठा देखा उनका गर्भ अंतर ध्यान हो गया और भगवान प्राकृत शिशु रूप धारण कर लिया। इसलिए यहाँ पर देवकी के गर्भ से जैसे एक बच्चा स्वाभाविक रूप में जन्म ग्रहण करता है यहाँ पर भगवान जन्म नहीं हुए, भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं, यहाँ पर भगवान प्रकट होते जन्म नहीं लेते हैं। और लेकिन गोकुल में कहते गोकुल में वहां पर सुखदेव गोस्वामी जब नंदोत्सव का वर्णना करते हैं, नंदोत्सव का वर्णना करते समय वहां पर नंदस्तु आत्मगचाता लाद महामना बोलते हुए पहला श्लोक में कहते ये कृष्ण कौन है? कहते नंदस्तु आत्मज, ये नंद बाबा का ही आत्मा है, इसलिए आत्मा वही जायते पुत्र, इसलिए यहाँ पर कृष्ण कौन है? कहते ये नंद का ही बेटा है। तो इसी विषय पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत टीका में उन्होंने बहुत सारी चीजों को देते हैं कैसे कृष्ण नंदस्तु आत्मज, तो वहां पर उन्होंने भागवत से जैसे जयती देवि का जन्म ना ब्रज श्रयत इंद्रिरा सस्वदत्तनी ये श्लोक को देते हैं और ब्रह्मा जी स्तुति से नौ मिटते अभ्र बहु से कैसम बराय वहां पर पशु पान रह जाय, वहां पर पशु पर मतलब पशु को जो पालन करने वाले वो कौन है? कहते नंद बाबा, इसलिए उनका अंग से जो प्रकट हुआ कहते वो कौन है? कहते कृष्ण कहते हैं। इसलिए वहां पर बहुत सारे श्लोकों को भागवत से कोटेशन देते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से स्थापन करते हैं ये कृष्ण कौन है? कहते कृष्ण ये नंद का ही ये बेटा कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपुर वर्णना करते हैं जब एक दिन मैया जसोदा और नंद बाबा ने एक दिन में स्वप्न देखा, नंद बाबा स्वप्न देख करके मैया जसोदा को बोलते हैं कहते जसोदे हमने एक स्वप्न देखा है। बोले क्या स्वप्न देखा? कहते एक श्याम सलोना सा एक और आज सुंदर बालक छोटे मोटे काजल लगाए बड़े सुंदर कुर्ता पहना हुआ और हमने स्वप्न देखा थे गोद में दूध पीते हुए और दूध पीते समय दोनों धार से दूध उठाते हुए उसको कुर्ता को भीगता हुआ मैंने देख मैंने स्वप्न देखा स्वप्न नहीं मेरे को लग रहा था जैसे सचमुच से ही मेरे गोद में एक श्याम सरना सा एक बालक को पीता ही मारते हुए दूध पीते हुए जसोदा बोलती है महल मैंने भी यही स्वप्न देखा कोई एक श्याम सलोना सा एक छोटा सा बालक मैं पीछे पीछे आकर के भैया भैया बोलते हुए मेरे कपड़े को पकड़ते हुए भैया भैया मेरे को दूध पिला दे बोलते हुए मेरे को बोल रहा है हम भी ये स्वप्न देखा जिस दिन उन्होंने स्वप्न देखा उसी दिन ही भैया जसोदा गर्भ धारण करती गर्भ धारण करने पर ब्रज में हला हो जाता है भैया जसोदा गर्भ धारण की है सारे ब्रजवासी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भैया जसोदा की अभी लाला भैया इसलिए भैया जसोदा की अभी संतान देने का जब समय आया समय आने पर वहां पर ब्रज अभी भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे ये प्रकृति एकदम सुंदर रूप में प्रकृति सज भर जाती है पृथ्वी आनंद तुम्हारे समा नहीं रही है तो क्यों पृथ्वी क्यों खुश हो रही थी कहते पृथ्वी इसलिए खुश हो रही थी कि भगवान वामन अवतार में भगवान हाँ हाँ भगवान वामन अवतार में ये पृथ्वी को तान रूप में हाँ उनको तीन पद उन्होंने जमीन मांगा था भगवान दान रूप में लिया था और राम अवतार में कभी ये पृथ्वी देवी भगवान का सास बनी थी सासू क्योंकि सीता जो जन्म हुई वो पृथ्वी से अभी कृष्ण अवतार में भगवान क्या बनाएंगे कृष्ण अवतार में ये सत्यभामा ये भू भू शक्ति की मूल अधिष्ठात्री देवी ये सत्यभामा है इसलिए भगवान सत्यभामा को अपना पति रूप में ग्रहण करेंगे और कृष्ण अवतार में और विशेष किया कहते हर अवतार में कभी वो जूते चप्पल पहने लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान से प्रेम में रहे भगवान को जूते पहने इसलिए भगवान बिना जूते के बगैर संपूर्ण ब्रज मंडल में उन्होंने विचार में किया इसलिए भैया कभी बोली लाला तू गैया चराने के लिए जाओगे तेरे लिए हम जूते बना देते कहते भैया हम लोग गोपाल है ये गैया को पालन करने वाले ये हमारे इष्ट और इष्ट हमारे पहनने के लिए जूती और मैं जूती पहनने के गैया चरा भी जाऊंगा अगर मेरे के लिए जूती बनाना चाहते हो शायद गैया के लिए रखी हुई जूती बना दो सभी के लिए फिर तो मैं जूती पहनूंगी इसलिए भगवान जूती धारण नहीं किया इसलिए भगवान संपूर्ण वृंदावन धाम में अपना चरण रज के द्वारा संपूर्ण वृंदावन धाम अभिषेक इसलिए वो संतुष्ट हो रही थी पृथ्वी नदियां संतुष्ट हो रही थी बोले क्यों नदियां संतुष्ट हो रही थी इसलिए अभी मूल नदी को जमुना ये जमुना मूल नदी है अभी और जितने सारे नदियां उनका शाखा प्रशाखा अभी जमुना को वे अपना बटरा रूप में स्वीकार करेगी इसलिए सारी नदियां संतुष्ट हो रही थी इसलिए ऐसे ही भगवान समय हो गया भगवान ऐसे ही भगवान गोकुल में भगवान जब जन्म होते हैं नंद बाबा बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव मनाते हैं वहां पर हमारे जीव गोस्वामी वर्णना किया नंद महोत्सव में नंद बाबा इतने लुटाए पर इतने दूध दही की वहां पर इतने दूध दही ब्रजवासी लाए थे ऐसे लग रहा था मानो दूध दही की नदी बह रही है और नंद बाबा का जो प्रांगण दूध दही से एकदम भर गया और ऐसे लग रहा था मानो ये कोई दूसरा समुद्र मंथन फिर समुद्र की मंथन हो रही है नंद बाबा बीच में खड़े हुए कहते समुद्र मंथन में सर्वप्रथम बीच निकला लेकिन यहाँ पर समुद्र मंथन में सर्वप्रथम क्या निकला कहते नंदस्तु आत्मदचाता लाल महामणि यहाँ पर साक्षात आनंद स्वरूप कृष्ण स्वयं यहाँ पर जन्म लेते हैं और वहां पर समुद्र मंथन से वहां पर तरह तरह रत्न निकला लेकिन यहाँ पर नंद बाबा ने इतने रत्न उन्होंने दान दिया इतने रत्न दान दिया सुंदर गोस्वामी वर्णना करते रमा क्रीड़ा अभूत निर्भव मान ऐसे लग रहा था ब्रज का अली गलियों में साक्षात लक्ष्मी देवी क्रीड़ा कर रही है इतने दिया जिस समय नंद बाबा गैया दान कर रहे थे गैया दान करते समय वहां पर शंकर जी थे पर इतने गैया दान कर रहे थे शंकर तो डर गए बोले क्यों कहते शंकर का था नंदी नंदी था शंकर जी का बोले कि गैया को दान करने से ऐसे नहीं हो मेरे नंदी को दिए दान
जैसा था गैया वो तो सांड और बैल नहीं दान करते थे केवल गाय ही, तो नंदी को कैसे वो दूध दे देगी?
कृष्ण परिपूर्ण रूप में, पूर्ण रूप में वसुदेव देवकी के पुत्र हुए, पूर्ण रूप में, और पूर्णतम रूप में ब्रज में गोकुल में जसोदा मैया के गर्भ से जन्म दिया। स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान है, और मथुरा वाले जो कृष्ण है वासुदेव, ये कृष्ण स्वयं कृष्ण के वैभव प्रकाश है, वैभव प्रकाश। इसलिए वैभव प्रकाश मान नारायण, उनका जन्म नहीं होता, आविर्भाव होता है। साधारण रूप में लड़के का जन्म छोटी दो भुजा के रूप में होता है, और यहाँ पर कृष्ण वसुदेव देवकी के घर में चार भुजाएं, सिर पर स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण अलंकारों से सुशोभित हो रहे थे, और 16 वर्ष की आयु जैसे किशोर उम्र में, ऐसा जन्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण का आविर्भाव है किंतु पूर्ण रूप में, और गोकुल में परिपूर्णतम रूप में वहां पर कृष्ण जन्म लिया। वहां पर नाड़ी छेदन संस्कार हुआ, मथुरा में नहीं हुआ। ब्राह्मण लोग आए और नाड़ी छेदन करने वाली भी आई, मंत्र के साथ विधिवत नाड़ी छेदन हुआ। ब्राह्मणों ने स्वस्तिक वाचन किया और संस्कार किया नाड़ी छेदन का, और नंद बाबा ने स्नान करके करोड़ों करोड़ों गाय और वस्त्र अलंकार सब दिए, इसका इन्होंने वर्णन किया है। इसलिए कृष्ण का जन्म मथुरा में भगवत रूप में, नारायण रूप में, पूर्ण रूप में, और गोकुल में परिपूर्णतम रूप में हुआ है। ये तात्पर्य था। हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज टोल्ड यू? यू कैन टेल, यू कैन स्पीक, ट्राई।
लिखो, पढ़ रही है, जाओ।
अज्ञान कल्याणस्य अज्ञानं शक्तिं तस्मात् श्रीगुरवेन पञ्चकर्ता दुर्गेश्च कृतस्य कृतेवश तत्तरन्तरं योगस्य। I understand some Hindi, I didn't hear the translation, so I'm trying to. Some remnants of what he has said.
He has explained
that Krishna has taken birth in Mathura. But he has also second verse in Gokul. Now in Mathura, he has taken, Guru has explained it also, that in Mathura he has appeared. It is avirbhav, not actually birth. It is an appearance and not exactly a birth. Because when he appeared in Mathura, he has appeared in his original form of Lord Narayan, with four arms, as a 16-year-old boy, 16-year-old youth, and with four arms and all ornaments. And this is not all one text verse usually. Whereas in Gokul, there is definite proof that Krishna has taken verse from the womb of the mother Yashoda. Now, I'm trying to recall what Vasananda was saying, that there is evidence in all different shastras that Krishna is the son of Nanda and Mother Yashoda. In the prayers of Lord Brahma, it is mentioned, for instance, that Krishna has appeared as the son of the leader of the cowherd boys, and that is none other than Nanda Maharaj. It is not there that is Vasudeva is spoken about. He has also said that he has taken birth in Braja, in the prayers of Lord Brahma. Janmana Braja, oh, he has taken birth in Braja. So there's no question of Krishna taking birth in Mathura as Nanda's son. It happens in Braj. Also, there is all evidence that when Nanda had his son, he was so happy that he was giving so much charity. And then very, with a great humor, Rasananda Prabhu was saying that Nanda was giving so much wealth and charity, so many cows, even Lord Shiva started to sing, oh, he may give my Nandi also in charity. And Gurudev was joking and said, but Nandi is not a cow, he's not giving any meat. Because there was no worry about that. But still Shambha was holding the tail of Nandi and said, hey, don't give away my bull. Like that. And Parvati was thinking, maybe you need my Ganesh word. So she was thinking also to Ganesh to your breast, like that. The elephant head, you know, Ganesh. So Nanda definitely was overjoyed when Krishna took birth in Vrindavan, and he gave so much charity, lots and lots and lots of cows and mounds of gold. Now, it is said that it was actually a leela of Lakshmi, or the goddess of fortune. She was having a great festival of giving away all the wealth that she could in honor of Krishna. Now, we know that when Krishna took birth in Mathura, then before him, Devaki Devi, she had six sons. It's explained in the Shastra that those six sons, they represent the six enemies that have to be eradicated before Krishna takes birth in our heart. Because the whole idea of listening to all these leelas, why does Krishna appear? He appears not only to re-establish Dharma, this is a general information given in Gita, or even not enough, not just to please the devotees, but also for everyone's benefit. Because simply by hearing, by lending oral reception to the leelas of Krishna, then Krishna will become established in our heart. Now, we all have this predicament in this world that we have somebody else than Krishna in the heart. Paramatma is there, but who is occupying our heart? Only objects of delight, of sense gratification. Now, Krishna comes in this world to give us an opportunity to hear about him, and by hearing about him, all these desire for sense gratification will go away, and he will establish himself in our heart. Srila Śrīla Mahārāja has given a very poetic description. He says, you should allow Krishna to land in your heart. It's like when an army is coming to invade another country. They have what we call a bridgehead, you say in English? They establish a bridgehead like that. He said, you should allow Krishna to land in your heart. And when you come in your heart, it make room. It kicks away everything else, just allow it to land in your heart. So the idea of listening to all this lila katha is that everything which is unwanted, anartha, in the heart will go away. Krishna will be established in our heart. And first, for Krishna to come, there must be a big sweeping taking place. So the six enemies, they take birth first from Devaki, and they are the six enemies, the six things which are preventing us from progressing in practice, the six main anarthas. Kama, loba, envy, matsarya, madness, illusion, all those greed, they are occupying the heart and preventing Krishna from being seated nicely there. So before Krishna appearing, then those six enemies were killed in the form of the six sons of Devaki. Then it goes, Lord Balaram, he is the master of Sandini, and he wants to serve Krishna in so many ways. You could say, my sense, Lord Balaram, he has been a monopoly of service. He says, I will serve Krishna in all ways. He comes, he becomes a dam, he becomes his seed, he becomes Ananta Sage for him to recline upon, he becomes his Brahmin shirt, he becomes his shoes, he's laying his hand on all kinds of service. He even becomes Ananda Manjari, the younger sister of Radharani, to also serve in Madhurya. He wants to lay his hand on every kind of service he can lay his hand on, to show the example, because he is Akanda Guru Tattva, he is original guru, spiritual master. What is the guru doing? Even now, we see him as master, but he sees him as servant. His service is all to capture all the conditioned souls and train them so that he can offer them to the lotus feet of Radha Krishna. When the guru comes in this world, he has two great things in his heart. One is that he is overflowing with compassion. He says, Krishna Kripa Sri Murti. He's not just Bhagavan's dear servant, he's also Bhagavan's mercy personified. If we beg Bhagavan's mercy, my Lord Shisha Guru Shisha Gopinath Maharaj used to say, imagine that you can go to Vrindavan in the spiritual world and you knock on the door. Krishna would open the door and say, what do you do here? Oh, I want your mercy. You fool, what are you doing here? It's always my pure devotee in material world. You go back there, get the mercy there, and then you can come back here. There's no direct approach. You have to go through him. And the second reason is that his heart is bleeding, not only with compassion for us, but also Krishna is so dear to him. He cannot tolerate the fact that all those foolish jivas, they're not giving their love to his dear Krishna. Therefore, by hook or by crook, he will come and convince us, you stop giving your heart and love to everyone in this world. You've been doing it for billions of births. He's never made anyone happy. You please give your heart to Radha and Krishna. Somehow he will come to convince us of that. So that is those two things that the spiritual master is coming in this world. Great compassion and this desire to also reclaim all the souls to give their love to this Ishtadev, Radha and Krishna. So the spiritual master is coming and on behalf of Lord Balaram, just Lord Balaram, I'm coming back to my subject, I was sidetracked, please forgive me. Just like Lord Balaram is coming and is preparing even the womb of Mother Yashoda, of Mother Devaki, for Krishna to come. So first he comes, he prepares the ground, then he's transferred to the womb of Rohini, therefore he has his name Sankarshan. He was attracted, he was dragged out. And then Krishna himself takes birth in the womb of Mother Devaki. Now, Rasananda was also explaining that this is due to in previous verse we hear that Devaki and Vasudev, they were Vishnugarbha and so they got, he also made a very nice point that some of them in one verse, I'm not going to be good with the names, they were worshipping God Vishnu himself, and he said, when he was free with the austerities, what do you want? He said, we want a son just like you. He said, but no one is my equal. I'll come myself as your son. And the other, they worship Lord Brahma, who is a devotee. By worshipping Lord Brahma, they also got. They were praying for Vatsalya praying, pure parental love towards the Lord. So they also got that. Both of them, one by directly worshipping the Lord, and one by worshipping the devotee of the Lord, got a blessing. Now, some point I didn't catch in Hindi, you said one, they got more by worshipping the devotee than by worshipping the Lord. What was that? You got more, but they got more by asking for praying than asking for the Lord himself.
If anyone worships Lord himself, and what receives in comparison to a person who is serving the devotees of Krishna, and what he gives, it is more better. Himself Narayan gave that I will come as your son, but he could not give prem. And other hand, Brahma being a devotee of Krishna, He gave a benediction. Oh, you will have Vatsalya Prem to Supreme Lord. So there is a speciality in the boon of
devotees
more than Lord Himself. If anyone serving Krishna and anyone serving Gopishwar, Mahadev, who will gain more? Gopishwar Mahadev, bhajan will do more. If anyone is worshipping Krishna and one is worshipping or meditating Rup Manjari, what Krishna can give and what Manjari will give? So he clarified this.
And Narayan never came in this world to make his pastimes. So Narayan appeared as a 400 form and as a teenager. And Krishna always came in this world as a do pastimes. So Krishna came as a from mother's womb like a baby. Bhakta of Krishna Brahma knows that Krishna will come very soon, so he gives benediction. He told once this thing.
मथुरा के आदि पद्मनाभ दर्शन करो. वी विल गो टू पद्मनाभ. विष्णु कर्ण गर्भोदशाई विष्णु फ्रॉम हिज नेवल अ लॉट ऑफ फ्लावर केम एंड इट वेंट ऑन द फ्लडेड वाटर ऑफ प्रलय and then Brahma took birth there. And then Brahma, by worshipping Supreme Lord, and he received some power, and then he created this world. So first, Padmana. Krishna Bara, Shvet Bara, two Bara. One friend, it was Pralaya. What?
Devastation.
Then Prithvi Devi went in the bottom of that cloud. And thus whole creation was finished. Then Baradev, Krishna Bara, he came and went directly in the bottom of water because he smelling power is very, very high. So where earth is, he discovered and went straight there. But there he saw Hiranyaksha and he was ready to fight with them. And then he ignored Vishnu, Bara Bhagavan, ignored and took the earth on his teeth like a a small
lancet. Mustard seed.
Very. And just very soon he came on the surface of water and kept it prithvi there. And then he
went back.
Attacked
Hiranand.
And 1,000 years
fighting.
After that, he killed that demon. This is Padmanabha, Krishna Bara. Shvet Bara, one more. When Vedas went on the bottom of ocean, all knowledge were finished. Ignorance was there. Then this Bodh Prabhu, Shvet Bara, went there and took Vedas and came on the surface of water and distributed that knowledge. Knowledge means, Ved means knowledge, to all. This Shvet Bara. And there are so many also how Shvet Bara or Krishna Bara were worshipped by Ravan, and after killing Ravan, Ramchandra took it to Ayodhya, and after that when Lavanasur was doing so much
chaos,
then Shatrughna was sent and he took that deity with him, and that is from there that deity is real in Mathura. You can also see that. Lastly, you will go to Dirga Vishnu. When Krishna... Then Dwarkadhish. And you should go there.
And Gotashram Tila.
And ask Dwarkadhish Krishna where you have kept your
flute.
Who is your father, mother? Really tell us. And where is your cows? Your steak? We want to know. And we will go and tell these things to gopis. Whether you are son of Nanda Yashoda or positively. And straight you should tell all these things. You should go and ask him and then come. Gaur Premanande.
So many eyes